भक्ति काव्य की मानवीय और ठेठ लोक जीवन तथा जन से जुड़ी हुई अनुभूतियों तथा उनके फल स्वरूप उभरने वाली उसकी जीवंत छब के इस परिप्रेक्ष्य में हम अगली पंक्तियों में सुर काव्य के कुछ विशिष्ट प्रसंगों की चर्चा करेंगे। इस तथ्य को रेखांकित करना चाहेंगे कि सुर आज भी हमारे लिए जरूरी क्यों है, प्रेरक क्यों है, हमारी विरासत क्यों है। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट होने के पहले सूरदास केवल विनय के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और उन्हें बाल कृष्ण की लीला के गायन की ओर प्रेरित किया। लीला के इन पदों के संदर्भ की चर्चा हम आगे करेंगे। संप्रत सवाल यह है कि विनय के जो ढेरों पद सूर ने गाए हैं उनका लौकिक संदर्भ क्या है। विनय के इन पदों के भीतर जिस दैन्य आत्मग्लान तथा जिस मर्मांतक पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है उसका स्रोत क्या है। क्या यह एक व्यक्ति का आत्मनिवेदन मात्र है अथवा एक व्यक्ति के माध्यम से एक पूरे के पूरे युग की व्यथा कथा का आकलन। इस वाणी को केवल सूरदास तक ही सीमित करना तथा उसे केवल एक भक्त का आत्मनिवेदन मानना एक बहुत बड़ा भ्रम होगा। सूर जिस समाज में रह रहे थे जाहिर है कि वह समाज एक सामंती समाज था जिसके अंतर्गत शासक शोषक वर्ग का पंजा साधारण जन की गर्दन पर दृढ़ता के साथ जमा हुआ था। सूर के इन विनय संबंधी पदों में दैन्य वेदना तथा पीड़ा की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है उसे सामंती समाज में घुटते हुए जन साधारण की पीड़ा से जोड़कर देखने और समझने की जरूरत है। इन पदों के भीतर से झांक कर तत्कालीन सामंती समाज के यथार्थ को हम बखूबी पहचान सकते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में सुर की वृत्ति विशेष रूप से रमी है। ये उनके प्रिय विषय रहे हैं और इनके चित्रण में ही उनकी ख्यात का मूलाधार अवस्थित है। यह सही है कि कृष्ण की विविध बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सुर जब तब अपने पाठकों को कृष्ण के ईश्वरीय रूप का बोध करा देते हैं, किंतु कृष्ण पर पड़े इस ईश्वरीय आवरण को तनिक हटाकर देखें तो क्या ये लीलाएं अधिक सहज और अधिक स्वाभाविक रूप में हमारे आकर्षण का विषय नहीं बनती। मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मया मोहिदाऊ बहुत खिझायो, खेलत में को काको गुसैया, जैसे ढेरों पदों में अभिव्यक्ति पाने वाले कृष्ण की छवि क्या अपनी मानवीयता और लौकिकता में हमें अपनी ओर नहीं खींचती। क्या जरूरी है कि इन पदों का आस्वाद करते हुए कृष्ण के ईश्वरीय रूप का ध्यान रखा जाए, या इन्हें गाते समय सुर के मन में कृष्ण के ईश्वरीय रूप की ही छाप थी। सच पूछा जाए तो अपने मानवीय तथा लौकिक संदर्भों में ही ये लीलाएं सुर के काव्य की स्थायी निधि हैं, और इनकी इस मानवीय तथा लौकिक आकृति के संदर्भ में ही उनके अंतर्गत निहित तथा व्यंज्य सुर काव्य की विशिष्टता को उभारा जा सकता है। सवाल है कि सुर ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन इतनी तन्मयता और इतने विस्तार में क्यों किया। यदि यह वल्लभाचार्य की दीक्षा का प्रतिफल था तो यह दीक्षा तो सुर के अलावा पुष्टि मार्ग के दूसरे कवियों को भी मिली थी। अष्टछाप के कवियों में सुर ही वात्सल्य को इतने उदात्त गरिमामय और सहज स्वाभाविक रूप में पूरी जीवंतता के साथ इतने विस्तार से क्यों उभार सके। क्या ये पद मात्र पुष्टि मार्ग की लीक पीटने के क्रम में ही सामने आए हैं अथवा इनके मूल में सुर की अपनी आभ्यंतर निष्ठाओं, अपनी प्रामाणिक अनुभूतियों और अपनी निजी आस्थाओं का भी अपना योग है। हमें इस सवाल पर कुछ गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। महज पुष्टि मार्ग के दायरे में ही सीमित कर देने या महज बाल मनोविज्ञान की ही सीमाओं में बांध देने से उसके एक महत्वपूर्ण कोण के अछूते रह जाने का खतरा है। सुर की अपनी जिंदगी का एक बड़ा अंश भी अंधकार में है। वल्लभाचार्य से मिलने के पहले की उनकी जिंदगी हमारे सामने लगभग नहीं है। संभव है इस जिंदगी में ही हमारे इस सवाल के बहुत से सूत्र फैले हों जिन्हें हमें पाने और टटोलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बारगी में या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय इस संबंध में अपर्याप्त होंगे, अधूरे होंगे। वात्सल्य के जिस महासागर को एक नारी के हृदय में लहराना था वह एक पुरुष के हृदय में यदि इतने विस्तार और वेग से उफनाया तो उसके पीछे कोई न कोई आधार होना चाहिए, और इस आधार को पाने के लिए सुर की उस जिंदगी को उजागर करने की जरूरत है जो उजागर नहीं हो पाई है और जिसे उजागर करने लायक साधन तथा सामग्री से हम वंचित हैं। ऐसी स्थिति में एकांगी निर्णय को ही समग्र मान लेने की बात से भी हमें बचना चाहिए। हमारा कहना इस संदर्भ में कुल इतना ही है। इसी पक्ष के से संबंधित एक और सवाल भी है। सवाल है कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण की उपासना को ही क्यों प्रतिष्ठा दी। दार्शनिक आध्यात्मिक सांप्रदायिक तथा उपासना की भूमि पर इस सवाल का जवाब भी दिया गया है और ईश्वर की सबसे निर्विकार कल्पना के रूप में उसकी व्याख्या भी की गई है। किंतु यहाँ भी हमें कुछ गहराई में जाकर सवाल पर विचार करने की जरूरत है। यह सब लोग जानते हैं कि वल्लभाचार्य मात्र एक धार्मिक दार्शनिक आचार्य ही नहीं, अपने समय के एक बहुत बड़े क्रांत दृष्टा सामाजिक विचारक भी थे। वल्लभाचार्य ही क्यों, भक्ति आंदोलन के आचार्यों में रामानुज, रामानंद आदि सभी के लिए यह बात कही जा सकती है। यदि ये आचार्य सामाजिक जीवन के नाना महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रगतिशील मानवतावादी क्रांतिकारी रूप न अपनाते, भक्ति का आंदोलन हार्दिक औदार्य तथा मानसिक औदार्य की जिस गहरी प्रेरणा से अनुप्राणित है, परंपरागत तमाम आचार विचारों विश्वासों तथा मान्यताओं को तोड़ता हुआ उस प्रशस्त सामाजिक आधार पर न खड़ा हो सकता था जिस पर वह खड़ा है और जिसके तहत हर जन मुसलमान ऊंच नीच स्त्री पुरुष सब एक ही जमीन पर एक साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। सवाल यहाँ वात्सल्य का है और वात्सल्य के इस सवाल के साथ अनिवार्य रूप से तत्कालीन समाज में नारी की अपनी हैसियत का सवाल भी जुड़ा हुआ है। नारी के संबंध में वामाचार से जुड़े हुए तांत्रिक तथा सिद्धों के दृष्टिकोण से हम बखूबी परिचित हैं। उनके बारे में नाथपंथी साधुओं यहाँ तक कि निर्गुण संतों की सोच भी हमारे सामने स्पष्ट है। एक के लिए यदि नारी भोग तथा नाना प्रकार की तांत्रिक साधनाओं का माध्यम है तो दूसरे के लिए वह मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, माया है, ठगनी है आदि आदि। नारी की अस्मिता के प्रति चली आ रही यह सोच गार्हस्थ धर्म की जिस अवमानना पर टिकी है उसे भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तत्कालीन समाज और समाज जीवन की जिस अव्यवस्था तथा अराजकता का जिक्र आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में किया है उसका एक आयाम और बड़ा आयाम गार्हस्थ जीवन के प्रति तथा नारी के प्रति इस गहरे वितृष्णा भाव तथा उपेक्षा के से संबंध रखता है। वल्लभाचार्य जैसे क्रांत दृष्टा सामाजिक विचारक तथा चिंतक सामाजिक जीवन की इस अराजकता तथा ह्रासशील मानसिकता से परिचित थे। वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग में बाल कृष्ण की जो आराधना प्रधान तथा केंद्रवर्ती रूप में मान्य कि वह सूर जैसे कवि जिस उत्साह तथा तन्मयता से ईश्वर के इस बाल रूप में डूबे उतर आए, जिस ऊंचाई पर जाकर उन्होंने वात्सल्य को प्रतिष्ठित किया, क्या उसके भीतर से हमें उनका इस प्रकार का कोई भी प्रयास लक्षित नहीं होता कि अस्त व्यस्त होते हुए सामाजिक जीवन में संतुलन लाने हेतु समाज में गार्हस्थ धर्म की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए, कि ईश्वर के बाल रूप की महिमा के माध्यम से नारी और इस प्रकार उसके मातृत्व को सम्मानित किया जाए। जहाँ बालक होगा स्वभावतः वहाँ माँ भी होगी, नारी होगी। सूर्य ने कृष्ण के बाल रूप को जहाँ भी और जितना भी उभारा है प्रायः हमेशा और हर जगह कृष्ण के साथ यशोदा भी हैं। यशोदा हज पालने झुलावे सिखवत चलन यशोदा मैया, मुख छवि देखी हो नंद घरन हुआ लगी नेक चलो नंद रानी आदि अध्यरो पद माता और पुत्र के इस चिरंतन सानिध्य को गरिमा प्रदान करते हैं। यही नहीं, ढेरों पदों में कृष्ण के साथ यशोदा ही नहीं नंद भी हैं और माता पिता के शुष्क प्रेम के सैकड़ों पदों के बीच से एक सुखी गृहस्थ जीवन की जो छवि निखर कर हमारे सामने आती है, क्या उसके माध्यम से वल्लभाचार्य और सूर बिखरते हुए गृहस्थ जीवन को एक नया आधार नहीं प्रदान करते। यदि कृष्ण के बाल रूप के वर्णन में सूर पुष्टि मार्ग की सांप्रदायिक परंपरा का ही निर्वाह कर रहे होते, कहना न होगा कि नारी के मातृत्व की गृहस्थ जीवन की जितनी विशद व्यंजना उनके माध्यम से हुई है वह कदापि संभव न थी। नारी के मातृत्व तथा गार्हस्थ धर्म की गरिमा से अभिभूत हुए बिना इस प्रकार के पदों की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वात्सल्य की एक एक मनोदशा को शिष्य मनोविज्ञान की एक एक बारीकी को, माता शिष्य तथा पिता और शिष्य के संबंधों की एक एक रेखा को, विषय की सीमा में जितनी गहराई, जितनी तन्मयता तथा जितने विस्तार से लगभग आत्मविभोर होकर सूर ने चित्रित किया है, उसे मात्र पुष्ट मार्गीय परंपरा का निर्वाह नहीं कहा जा सकता। पुष्ट मार्ग में और भी कवि भक्त हुए हैं। अष्टछाप में सूर के अलावा सात और रचनाकार भक्त हैं, किंतु सूर को ही अष्टछाप का जहाज कहा गया। विश्व स्तर की ख्यात सूर को ही मिल पाई। कालजयी सूर की ही कविता हुई। परंपरा की लकीर पीटने तथा परंपरा की लीक का अतिक्रमण कर नई लीक बनाने वालों में यही फर्क होता है, और सूर की चर्चा करते समय इसे हमें याद रखना चाहिए। जाहिर है कि सूर के इन पदों के भीतर से उनकी स्वस्थ सामाजिक चेतना, उनकी प्रखर मानवीय चिंता भी व्यंजित होती है। ये पद हमें केवल मुग्ध ही नहीं करते, सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मात्र सांप्रदायिक चर्चा से ही इन्हें नहीं निपटाया जा सकता। अब हम सूर के श्रृंगार चित्रण पर आएंगे, जिस क्षेत्र में भी वे अद्वितीय माने गए हैं। सूर द्वारा चित्रित कृष्ण के श्रृंगार लीलाओं की भी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। उनके रास को नित्य कहा गया है। रास ही नहीं, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की अन्य प्रेम लीलाओं को भी सांप्रदायिक आशयों से गर्भित माना गया है। संभव है सूर इस सारे श्रृंगार चित्रण का दार्शनिक, सांप्रदायिक, आध्यात्मिक अर्थ हो, जैसा कि बहुतों के लिए वह है भी, किंतु हमारे लिए उसका महत्व नहीं है। हम उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। हम उनकी बात नहीं जानते जो इन सहज मानवीय लीलाओं में कोई दिव्य अर्थ खोजकर उसमें डूबा रहना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते। हम तो विशुद्ध मानवीय धरातल पर, विशुद्ध लौकिक भूमि पर अपनी संपूर्ण लौकिक और मानवीय व्यंजनाओं के साथ सूर द्वारा सहज ही सुलभ किए गए प्रेम के इस महोदक में अवगाहन करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसा करें। आंखों के सामने राश राश सुषमा के साथ लहराते हुए प्रेम के इस महासागर में अवगाहन न कर इन लीलाओं की सत्ता का एक दिव्य तथा अलौकिक जगत में मानने वालों के लिए हम क्या कहें, जो साक्षात ब्रज की धरती पर होने वाली इन लीलाओं को दैवी मानते हैं, वे माना करें। हमारे लिए तो यह सब केवल एकदम मानवीय है। हम इसे सूर काव्य की बहुत अमूल्य और बड़ी पावन मानवीय धरोहर मानते हैं। बड़ी मानवीय, बड़ी सहज, बड़ी निष्कलुष और बड़ी उदात्त अनुभूतियों से मंडित सूर का यह प्रेम लोक है। यहाँ कुंठा, मलिनता, स्वार्थ और लिप्सा का लेश मात्र भी नहीं है। यहाँ खुले हृदय और खुले मन से किया गया अद्भुत प्रेम व्यापार है, जो रूखे मनों को सरस करता है, शुष्क हृदयों को सींचता है, जड़ से जड़ व्यक्ति को स्पंदित करते हुए उसे जीवन के प्रति उन्मुख करता है। यहाँ कृष्ण है, राधा है, गोप गोपियाँ हैं, ब्रज की हरी भरी उन्मुक्त प्रकृति है, और इन सब के बीच प्रेम का वह महोदय है जो हमें आमंत्रित करता है एक खुले हुए जीवन के राग रस रंग में डूब जाने को, मानवीय जीवन के ताप को महसूस करने को, अपने को जीवन के स्पंदनों से भर देने को, एकदम तरोताजा हो जाने को। राधा और कृष्ण तथा गोपियों के इस प्रेम की तुलना रीतकालीन दरबारी कवियों के प्रेम चित्रण से करें, जहां भी भले ही बहाने के रूप में, लेकिन राधा कृष्ण ही नायिका और नायक के रूप में विराजमान है। कहना न होगा कि दोनों को आमने सामने रख कर देखने मात्र से सूर की सोच तथा रीतकाल के दरबारी कवियों की सोच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हमें स्पष्ट होगा कि जहां रीतकालीन दरबारी कवियों की सीमा मध्यकालीन सामंती मानसिकता को ढोने में स्पष्ट हुई है, वहां सूर की कविता उनकी सोच न केवल इस मध्यकालीन सामंती मानसिकता को नकारती है, उसका तिरस्कार भी करती है। यही नहीं, वह कुंठाहीन निष्कलुष प्रेम की नई भूमियों और नए प्रतिमानों की सृष्टि भी करती है। अपने प्रणय चित्रण में सूर ने जीवन के सहज उल्लास और यौवन के सहज आवेग को नितांत वर्जनाहीन अभिव्यक्ति दी है। जैसा कि आचार्य शुक्ल का कहना है, यहाँ प्रेम कोई बैठे ठाले का धंधा न बनकर, शौक या चीज बनकर नहीं आया है। वहाँ यहाँ वह जीवन की अनिवार्यता है, यहाँ उसकी व्याप्ति जीवन की नाना भूमिकाओं तक है। वह यहाँ मात्र संयोग नहीं है, वरन बाल्यावस्था से क्रमशः अंकुरित होते हुए युवावस्था तक पूरी तरह पल्लवित होते दिखाया गया है। उसका विकास हुआ है, गुणात्मक विकास। यहाँ वह लंबे साहचर्य का परिणाम है जिसके निशान दिलों से मिटाए नहीं मिटते। तभी तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, लड़िकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटे। सूर के प्रेम वर्णन की यह कुंठाहीन अस्खलित निर्मल तथा निखरी हुई छवि ही है जिसे लक्ष्य कर मर्यादावादी आचार्य शुक्ल तक रीझ उठे हैं और उसके संदर्भ में रितकालीन दरबारी प्रेम चित्रण के भर्त्सना करते हुए टिप्पणी करते हैं। सूर का संयोग वर्णन मात्र एक क्षणिक घटना नहीं है, वह प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है। किसी की रूप चर्चा सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। नित्य अपने बीच चलते फिरते हंसते बोलते वन में गाय चराते देखते देखते गोपियां कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में। इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं, जिनमें अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा होती है। सूर के कृष्ण और गोपियां पक्षियों के समान स्वच्छंद हैं, वे लोक बंधनों से जकड़े हुए नहीं दिखाए गए हैं। जिस प्रकार के स्वच्छंद समाज का स्वप्न अंग्रेज कवि शैली ने देखा करते थे, उसी प्रकार का यह समाज सूर ने चित्रित किया है। त्रिवेणी पेज 86। सूर द्वारा चित्रित बाधा बंध विहीन यह जो समाज है और इस समाज में अपनी समुची गहराई मुक्तता तथा विस्तार में चित्रित उनका यह जो प्रेम है, वह यह सूर की फंतासी है, उनके द्वारा रचित एक कल्पना लोक है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस फंतासी और इस कल्पना लोक की रचना सूर ने क्यों की। इस सवाल का जवाब देते हुए यदि हम कहें कि यहाँ भी सूर की निगाह अपने समय के समाज की वास्तविकता पर टिकी हुई है और इस प्रेम चित्रण के माध्यम से वे इस वास्तविकता के बारे में अपनी निहायत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते दिखाई पड़ते हैं, तो गलत नहीं होगा। मध्यकालीन रूढ़ जर्जर भांति भांति की वर्जनाओं से ग्रस्त सामाजिक पारिवारिक जीवन, उसके घुटन और ऊब भरे सामंती माहौल, उसके तमाम सारे जर्जर कानून कायदों रीतियों नीतियों के खिलाफ जीवन की सहजता पर आस्था रखने वाले सूरदास का यह सात्विक आक्रोश और रोष ही है जो उनकी सरसवाणी में घुल पच कर प्रेम के इस शानदार महोत्सव का रूप धारण कर सामने आया है। हमने ऊपर वात्सल्य चित्रण के प्रसंग में नारी की अपनी अस्मिता के सवाल को उठाया है, श्रृंगार के इस संदर्भ में वह और भी उभर कर हमारे सामने आता है। मध्यकाल के सामंती समाज में घर और परिवार की चार दीवारी में घुटती नारी की स्थिति पर गौर करें, नारी शरीर के भोग की सामंती मानसिकता पर ध्यान दें और तब नारी के मन के भीतर छिपी हुई उसकी प्रेम की प्यास को पहचाने, अपनी सामाजिक और मानसिक मुक्ति के लिए छटपटाती हुई नारी की कुचली हुई अस्मिता को सूर अपने प्रेम श्रृंगार वर्णन के माध्यम से उसकी समस्त आकांक्षाओं के साथ हमारे सामने मूर्त करते हैं। यह नारी मन में छिपी प्रेम की आकुल प्यास है जिसे सूर ने पहचाना, उभारा और गहराई तक जाकर सराहा है। हमने सूर के उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन पर मर्यादावादी आचार्य शुक्ल के रीझने की बात कही है। तनिक इस दृश्य पट को आंखों के सामने रखिए। चांदनी रात है, यमुना का किनारा है, हवा में झूमते लहराते अरण्य कुंज हैं। ऐसे ही मादक माहौल में कृष्ण की बंसी बज उठती है और बंसी की ध्वन सुनते ही अपने घर परिवार लोकलाज कानून कायदों को एक ओर रख उनका तिरस्कार करते हुए गोपियां दौड़ पड़ती हैं। कृष्ण के साथ यमुना के तट पर रास रचाने और यह रास सारी रात चलता है जिसमें सब बेसुध हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल का सहृदय अपना सारा मर्यादावाद विस्मृत कर यहाँ सूर की कविता और कला पर मुक्त हो उठता है। नारी मुक्ति की यह वह परिकल्पना है जो सामंती समाज में नारी की विगरहणी स्थिति को लक्ष्य कर सूर ने अपने यहाँ प्रस्तुत की है। नारी अस्मिता को पहचानने वाला और नारी मन के स्वप्नों उसकी आशाओं आकांक्षाओं को मानवीय संवेदना की समुची गहराई और व्याप्ति के साथ उभारने और अंकित करने वाला इतना बड़ा रचनाकार उस युग में दूसरा नहीं हुआ। कुछ चर्चा हम सूर द्वारा अंकित वियोग वर्णन की करना चाहेंगे। वह इसलिए कि सूर संयोग श्रृंगार के कवि उतने नहीं जितने वियोग श्रृंगार के हैं। सूर सागर का अधिकांश विरह के आंसुओं से निर्मित है। संयोग तो वहाँ मात्र उस पृष्ठभूमि का काम करता है जो वियोग के प्रभाव तथा व्याप्ति को अनेक गुना बढ़ा देती है। कृष्ण जब तक मथुरा नहीं गए हैं, वियोग के चित्रों का सवाल ही पैदा नहीं होता। केल क्रीड़ा के चित्र पर चित्र हैं, शोक और चंचल राधा की न जाने कितनी मादक अदाएं, बाण जैसी निकुली चितवन से वह कृष्ण को बेच देती है। गोरी तेरे नयन किधोरी बाण, वह कृष्ण के कंधों पर भी चढ़कर घूमती है। गोपियां निर्वसन होती हैं, कृष्ण उनके वसन चुरा लेते हैं। रात रात भर यमुना के किनारे चांदनी की मादकता में बेसुध नाचा करते हैं। यह सब सूर सागर में है, परंतु कितना और कितनी दूर तक। एक बार अक्रूर आए और कृष्ण को मथुरा ले गए तो ले गए, और कृष्ण के मथुरा जाने के बाद सूर सागर क्या है, वियोग का महोदत जिसमें राधा, गोपियों, ब्रज के लोगों, नंद और यशोदा के आंसुओं की ही राशि राशि एकत्र है। और कहना न होगा कि यह अंश सूर सागर का सबसे लंबा अंश है। सूर सागर का अधिकांश वियोग की इन्हीं मार्मिक अनुभूतियों से निर्मित है। सूर सागर मूलतः और मुख्यतः वियोग का काव्य है। काव्य ही नहीं, वह वियोग का महाकाव्य है। एक दुखांत महाकाव्य जिसके जोड़ की दूसरी मिसाल मिलना कठिन है। सूर ने संयोग से ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने को इस वियोग पर केंद्रित किया है। अपनी संवेदना को वियोग की कठिन अनुभूतियों से होकर गुजारा है। यही सूर और सामान्य श्रृंगारी कवियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। श्रृंगार को रसराज कहा गया है, और उसे रसराज इस नाते कहा गया है कि उसमें जीवन की सुख और दुख मिश्रित अनुभूतियों का समान योग है। वह जिंदगी को उसकी संपूर्णता में छूता है। इस रसराज को मात्र उसके संयोग पक्ष तक ही सीमित कर देने वाले बहुत से कवि हुए हैं। कह सकते हैं कि अधिकांश श्रृंगार काव्य संयोग का ही काव्य है। कारण संयोग में रसिक मन को लुभाने तथा रमाने की सामग्री बहुत होती है। जहाँ तक वियोग का सवाल है, वहाँ नायिका तो वैसी शोक चंचल जतराई यौवन वाली केल क्रीड़ा की पुतली रह नहीं जाती, या कम से कम उसकी गतिविधियां वैसी नहीं रह जाती जैसी वे संयोगावस्था में थी। अब कवि रसराज का चित्रण करे तो करे, उस रसिक मन संयोग से आगे श्रृंगार की उस भूमि में जाने को ही नहीं होता, जहाँ सूख कर कांटा हुई नायिका है, उसका पीड़क एकांत और उसका भग्न मन। यही कारण है कि जीवन की समग्रता में न रमने वाले, उसमें दिलचस्पी न रखने वाले कवि प्रायः श्रृंगार के संयोग वर्णन में ही ठहर जाते हैं। और यदि वियोग की जमीन पर कदम रखते भी हैं औपचारिकता या आवश्यकता के निर्वाह के लिए, तो या तो बुरी तरह असफल होते हैं या उपहासास्पद बन जाते हैं। श्रृंगार को ही उपहासास्पद बना देते हैं। रीतकाल के दरबारी कवियों का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में यदि कहा जाए कि लिखने के लिए कोई भी श्रृंगारी रचना करे, श्रृंगार का वास्तविक और रसिद्ध कवि वही कहा जाएगा। श्रृंगार की रचना में प्रतिमान वही निर्मित करेगा, कसौटियां वही बसाएगा बनाएगा जिसमें संयोग के साथ साथ उसी सामर्थ्य को सूचित करते हुए वियोग के चित्रण की भी क्षमता हो। मात्र क्षमता ही न हो, जो वियोग के क्षेत्र में संयोग से भी ज्यादा रमने और ठहर सकने का साहस रखता हो, और बावजूद वियोग की जमीन पर अपने लंबे ठहराव के जो वियोग की गरिमा को उसके सारे त्रास और सारी कचोट के साथ ऐसी गंभीरता दे सकने में समर्थ हो, जो उसकी मूलवर्ती चारित्रिक पहचान है। सूर रसिद्ध कवि इसलिए हैं, सूर श्रृंगार के क्षेत्र में अपराजेय इसलिए हैं कि उन्होंने ऐसा किया है कि वे वियोग की जमीन पर उसके संपूर्ण गरिमा को सुरक्षित रखते हुए रमे और ठहरे हैं, कि उनमें वियोग के त्रास चरित्र को उभारने और उसे लंबे समय तक झेलते रहने की अद्भुत क्षमता है। श्रृंगार विहारी ने भी लिखा है, और यश पाया है। पर सूर के श्रृंगार और बिहारी या उन जैसे रचनाकारों में क्या फर्क है, यह हम ऐसे विशिष्ट संदर्भों में ही पहचान सकते हैं। वियोग का तन्मय कर देने वाला त्रासद चित्रण ही नहीं, उस वियोग चित्रण के बीच से माननीय नारी की नारी अस्मिता की जो छप सूर ने उभारी है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। आचार्य शुक्ल जैसे मर्मज्ञ भी इस स्थल पर सूर की सही पहचान से चूक गए हैं। कृष्ण जो एक बार मथुरा गए सो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आए, और बात यहीं तक सीमित नहीं है। नारी अस्मिता की महानता और गरिमा के चितेरे सूर अपने ग्रामीण गोपिकाओं को फिर भी कभी मथुरा नहीं भेजते। वह राधा जो एक पल भी कृष्ण के अभाव को नहीं सह सकती थी, फिर भी कभी मथुरा की ओर पैर नहीं रखती। कृष्ण नहीं आए, वादा करके भी नहीं आए, यदि उनमें इतना अभिमान है तो नारी का अभिमान कम तो नहीं है। वह उनकी याद में तिल तिल कर गल जाना, मर जाना पसंद करेगी, किंतु आत्मसम्मान बेचकर ऐसे झूठे व्यक्ति के पास अपनी ओर से जाना नहीं चाहेगी, नहीं जाएगी। कृष्ण लौट कर नहीं आते तो नहीं आते, और गोपियां मथुरा नहीं जाती तो नहीं जाती। नारी अस्मिता का, नारी के आत्मसम्मान का यह गरिमामय चित्र सूर ही अंकित कर सकते थे, और उन्होंने किया भी है, पूरे विस्तार से, पूरी निष्ठा से किया है। और उस कंट्रास्ट को भी देखें जो राधा के संदर्भ में सूर ने चित्रित किया है। कहां तो पहले की शोक और चंचल राधा, बाण जैसे नुकीले कटाक्ष फेंकने वाली राधा, कृष्ण के कंधे पर चढ़कर खेल करने वाली राधा, और कहां यह राधा जिसका चित्र सूर ने कुरुक्षेत्र के मेले के अवसर पर दिया है। कृष्ण रुक्मिणी के साथ कुरुक्षेत्र के मेले में आते हैं। रुक्मिणी उनसे पूछती है, तुम जिस राधा का जिक्र अक्सर किया करते थे, वह राधा कहाँ है? कृष्ण भीड़ में रुक्मिणी को इशारा करते हैं कि वह देखो, वह राधा वहाँ है। रुक्मिणी देखती है, सूर का चित्र है। मनसा सुमिरन रूप ध्यान उर दृष्टि नई तो उतमोरी, वह लख जुवत बिंद में ठाढ़ी, नील वसन तन गोरी। रुक्मिणी का साक्षात्कार यहाँ एक ऐसी राधा से होता है जिसकी सोखी न जाने कहाँ विलीन हो गई है, जिसके नेत्र बाण अब वैसे नहीं रहे, वे आंसुओं से लबालब भरे हैं, और उसका गदराया बदन जैसे एकदम से सूख गया हो, जिसकी चंचलता पता नहीं कहाँ चली गई है, जो शांत स्थिर युवतियों की भीड़ में खोई सी खड़ी है। इसे ही सच्चे रसिद्ध कवि की दृष्टि का पैनापन कहते हैं, इसे ही किसी कवि और उसकी रचना का बड़प्पन कहते हैं। ये वे स्थल हैं जहाँ सूर सिद्ध कवि पहले हैं, पुष्टिमार्गी भक्त बाद में। यह वह श्रृंगार है, वह प्रेम है, जिसके समक्ष सामंती मानसिकता से ग्रस्त रीतकालीन श्रृंगार तथा प्रेम पानी भरता हुआ दिखाई पड़ता है। वह जिसके सात्विक ताप में सारा का सारा रीतकालीन नायिका भेद भस्म हो जाता है, यही श्रृंगार का रस राजत्व है, यही उसकी महत्ता है, और यही सूर की उपलब्धि है। हमारे लिए सूर की सबसे मूल्यवान विरासत है। वात्सल्य तथा श्रृंगार के इस चित्रण में ब्रज की लोक संस्कृति तथा लोक जीवन को जिस गहराई तथा विस्तार से सूर ने प्रस्तुत किया है, वह सूर सागर और सूर काव्य की ही नहीं, समूची हिंदी कविता की अमूल्य निधि है। यह एक ऐसी ग्रामीण संस्कृति है जो अपनी जीवंतता में अनुपम है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ हर व्यक्ति क्रियाशील है, प्रेम का कारोबार भी दैनंदिन जीवन के कारोबार के साथ ही चलता है। कृष्ण गाय चराने जाते हैं, गोपियां दूध दही बेचने जाती हैं, और इन सारे प्रसंगों को जीवंत कर्मठता के बीच उनके प्रेम के प्रसंग भी गूंथे रहते हैं। प्रातः काल से ही समूचे ब्रज में एक कार्य व्यापार चलने लगते हैं, कहीं दूध दुहा जा रहा है, कहीं माखन बिलोया जा रहा है, कहीं उन्हें घर घर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, कहीं पैस लगी है, कहीं सौदा सुलूफ खरीदा जा रहा है। ब्रज की जीवंत क्रियाशील जिंदगी को अंधे सूरदास ने हम सबको उसके सारे वैविध्य के साथ दिखाया है। ब्रज के लोग पर्व तीज त्योहार उत्सव समारोह बाजार मेले आदि ही नहीं, जैसा हमने कहा, ब्रज के निवासियों के दैनंदिन जीवन की एक एक रेखा सूर ने उकेरी है। रीतकालीन नागर संस्कृति की कृत्रिमता यहाँ नहीं, यहाँ वह सहजता है जो हमें बलात् अपनी ओर खींचती है। ब्रज में रहते हुए कृष्ण का सारा जीवन ग्वाल बालों के समान ही बीतता है। उसमें सूर की ओर से कहीं कोई आरोपण नहीं है। यह सूर की अपनी ग्राम दृष्टि है जो गांव की संस्कृति को इतनी विशदता से और इतनी बारीकी से देख और दिखा सकी है। ब्रज प्रदेश और उसकी संस्कृति का इतिहास लिखने वालों के लिए सूर सागर का एक अक्षय कोष है। यदि मात्र लोक संस्कृत के अध्ययन के दृष्टि से ही सूरदास की कविता को देखा जाए तो इस बिंदु पर भी वह अद्वितीय है। लोक जीवन से तादात्म्य के बिना लोक जीवन का इतना यथार्थ और हृदयग्राही चित्र संभव नहीं है। यह एक सीख है जिसे लोक संस्कृत में रुचि रखने वालों को सूरदास से ग्रहण करना चाहिए। कहा गया है कि सूर की दृष्टि महत्वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में ही रमी है। यह भी कहा गया है कि उनकी सामाजिक चेतना तुलसी के समान प्रखर नहीं है। ब्रह्म की शील शक्ति तथा सौंदर्य, इन तीन विभूतियों में उन्होंने मात्र सौंदर्य पर ही अपने को केंद्रित किया है। यह सही है कि लोक संग्रह तथा लोक रक्षा का जैसा और जो भाव तुलसी में पाया जाता है वैसा सूर में नहीं है, और यह आवश्यक भी नहीं है। आवश्यक नहीं है कि कोई कवि जीवन के सारे पक्षों तक दौड़ लगाए और महत्वपूर्ण या महत् कविता की यह कोई आवश्यक और आधारभूत शर्त भी नहीं है। सूर ने अपने ढंग से जीवन को देखा और चित्रित किया है, और जिन क्षेत्रों तक उन्होंने अपनी पहुंच प्रदर्शित की है उनमें वे आद्यंत रमे और जिए भी हैं। रही सामाजिक चेतना की प्रखरता और उसकी अभिव्यक्ति की बात, तो हम अपने पिछले विवेचन में इस तथ्य पर प्रकाश डाल चुके हैं कि सूर के वात्सल्य तथा श्रृंगार वर्णनों के भीतर से उभरने वाली दूसरी व्यंजनाओं को भी हमें पढ़ना चाहिए, और उनके संदर्भ में सूर गहरी सामाजिक चेतना के कवि ठहरते हैं। जहाँ तक सामाजिक वास्तविकता को सीधे ही उभारने की बात है अथवा समकालीन जीवन के प्रसिद्ध प्रतिक्रियाओं का सवाल है, वे भी हमें सूर में अनेक प्रसंगों में उपलब्ध होती हैं। सामंती समाज की भोग लिप्सा का यथार्थ और जीता जागता चित्र तथा उसके पर सूर की स्पष्ट तथा तीखी प्रतिक्रिया हमें उनके चौपार जगत मढ़े जुग बीते पद में दिखाई पड़ती है। ऐसे भी अनेक पद हैं जिनमें सूर अपने समय की समाज व्यवस्था, शासन, राज दरबार आदि पर व्यंग्य करते हैं और उनकी असलियत को उभार कर हमारे सामने रखते हैं। धार्मिक रूढ़ियों पर उनके कठोर व्यंग्य को हम उनके जरत ज्वाला गिरत गिरते स्वकर काटत शीश जैसे पद में पाते हैं। जन्म साहिबी करत गयो शीर्षक पद आध्यात्मिक रूपक में तत्कालीन शासन व्यवस्था पर चोट करता है। गोपियां जो बार बार उद्धव को भ्रमर कहकर संबोधित करती हैं, उसकी रसलुप्तता की भर्त्सना करती हैं, उसके मूल में सामंती मानसिकता वाले राजशील लंपटों का रूप ही विद्यमान है। कृष्ण के द्वारकाधीश बन जाने पर सुदामा के साथ किया गया कृष्ण का आत्मीय व्यवहार, जिसे लेकर शुभ ने अनेक पद रचे हैं, सामंती समाज में विकसित होते हुए मैत्री संबंधों पर कठोर व्यंग्य ही करता है। राजशील सामंती समाज के संदर्भ में सूर की ये निष्ठाएं जितनी तात्विक और प्रगतिशील हैं, सूर का समसामयिक बोध भी उतनी ही प्रखरता से उजागर करती हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति का सूर का अपना अलग आयाम है, और इस आयाम पर सूर मात्र श्रृंगार और वात्सल्य के मुग्ध कभी ही नहीं रह जाते, सामयिक बोध के स्वामी बनकर भी हमारे समक्ष आते हैं। सूर के भ्रमर गीत प्रसंग की थोड़ी चर्चा भी हम करना चाहेंगे। भ्रमर गीत के इस प्रसंग को लेकर सगुण निर्गुण का विवाद हिंदी में खूब उछाला गया है। यह विवाद जितना अतिरंजित बनाकर पेश किया गया है वस्तुतः वैसा वह नहीं है। दार्शनिक स्तर पर तो सगुण भक्त भी निर्गुण को स्वीकार करते हैं। व्यावहारिक जमीन पर जनता की चित्तवृत्ति को आराधना का कोई ठोस आधार प्रदान करने के लिए वे जरूर सगुण साकार को उभारते और महत्व देते हैं, किंतु जहां तक सूर का सवाल है वे अपने को भ्रमर गीत में भी इस विवाद में ज्यादा नहीं उलझाते। अतएव भ्रमर गीत को सही रूप में पहचानने के लिए हमें उसकी मूलवर्ती चिंता को सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। कुछ एक पद सूर में ऐसे जरूर मिलते हैं जिनमें उन्होंने निर्गुण की मखौल उड़ा रही है, उसकी वास्तविकता पर संदेह किया है। निर्गुण कौन देश को वासी जैसे पद इसी प्रकार के हैं, किंतु अधिकतर पदों में उन्होंने निर्गुण की व्यर्थता का ही प्रतिपादन किया है। उनका कहना कुछ इस प्रकार का है कि होगा कोई निर्गुण पर वह हमारे काम का नहीं है, अतएव हम उस पर अपना सिर क्यों मारे। उद्धव से गोपियों के अधिकांश तर्क इसी मनोभूम की उपज हैं। हमने पिछले पृष्ठों में भक्त कवियों की मूलतः जीवन प्रेम के प्रेमी कवियों के रूप में पेश किया है। कम से कम सुर पर हमारी बात 100% लागू होती है। वे प्रेम के कवि हैं, जीवन में रस लेने और देने वाले कवि हैं, और इसीलिए भ्रमर गीत में वे जिस सवाल को पूरी गंभीरता से उभारते हैं और गोपियों तथा उद्धव में प्रद्वंदिता दिखाते हैं, वह निर्गुण सगुण से उतना संबंध नहीं रखता, वरन प्रेम बयान बनाम ज्ञान, योग बनाम भक्ति जैसे मुद्दों को उभारता है। एक ओर ज्ञानी उद्धव हैं जो गोपियों के समक्ष ज्ञान और योग का पक्ष प्रस्तुत करते हैं, दूसरी ओर कृष्ण की भक्ति तथा प्रेम में आकंठ डूबी गोपियां हैं जो उनके तर्कों को काटती हुई भक्ति और प्रेम का पक्ष रखती हैं। और इस झगड़े में सुर आज से अंत तक गोपियों का साथ देते हैं। लगभग सारे ही पदों में यही ज्ञान बनाम प्रेम, योग बनाम भक्ति का द्वंद्व देख पड़ता है। सुर का प्रेम तथा भक्ति का पक्ष लेते हुए ज्ञान तथा योग की मखौल उड़ाना उनकी प्रवृत्ति मुखी चेतना का ही परिचायक है। उन जैसे रससिद्ध प्रेमी कवि और भक्त और कुछ कर ही नहीं सकते थे। यहाँ भी हम कहना चाहेंगे कि प्रेम तथा भक्ति की बात भी सुर अपनी विशुद्ध भक्ति परक आस्था के तहत नहीं करते। उन तर्कों को छोड़ दिया जाए जो ठेठ लोक जीवन के संदर्भों से उपजे हैं तथा जिन्हें सुर की ग्रामीणाएं प्रस्तुत करते हैं, गो की बड़े प्यारे तर्क उनके हैं, तो क्या इन तर्कों के भीतर से सुर की लोक परक आस्था नहीं झलकती? क्या संसार के मिथ्यात्व की बात को ये तर्क क्षतिग्रस्त नहीं करते? गोपियों का सात्विक निर्मल प्रेम जो इन तर्कों के भीतर से अभिव्यक्ति पा रहा है, क्या नारी धर्म के प्रति, सांसारिक जीवन के प्रति सुर और उनकी निष्ठा के योग को सूचित नहीं करता? सच पूछा जाए तो निर्गुण और सगुण संबंधी सारे विवाद में भ्रम और वास्तविकता के बीच सुर ने वास्तविकता के पक्ष का समर्थन किया है। संसार के मिथ्यात्व का खंडन करके उसकी सत्यता को प्रतिष्ठित किया है। रहस्य और योग तथा ज्ञान और वैराग्य की तुलना में सह सांसारिक धर्म की विजय दिखाई है। क्या यह सुर काव्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है? सुर की गोपिकाएं निर्गुण और सगुण के झगड़े में इसलिए भी नहीं पड़ती, जैसा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है कि उनकी दृष्टि में जिस सगुण कृष्ण को वह जानती हैं, चाहती हैं, वह कौन से निर्गुण से कम है। जो कृष्ण चार कोष पर विराजमान होकर भी कभी उनके पास नहीं आता, जिसके रूप दर्शन तथा बोल तक सुनने को वे तरस जाती हैं, वह किस निर्गुण से कम उनके लिए निर्गुण है। उस एक निर्गुण को ही झेलना उनके लिए जब इतना त्रासद है, तब उद्धव के बताए दूसरे निर्गुण को वे कैसे स्वीकार करें, कैसे झेलें? बात ठेठ गोपिकाओं के अपने जीवनानुभवों से उपजी है, अतएव उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये सुर काव्य की लोकधर्मी आकृति की कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जिन्हें हमने उकेरने का प्रयास किया है। सुर निश्चय ही एक भक्त कवि हैं और उनकी कविता भक्ति के भाव में डूबी हुई है। इससे हमें परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उस युग में भक्ति का अवलंब लेकर ही सुर अपनी बातें कह सकते थे। उनकी धार्मिक आस्थाओं से भी हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, कारण उस युग में धर्म के आवरण से ही बात की जा सकती थी। किंतु जो कुछ सुर ने समग्रता व्यंजित किया है, वह धर्म और भक्ति की ही नहीं, उसमें उनकी लोकपरक आस्था की भी, उनकी प्रखर मानवीय संवेदनाओं की भी, उनकी सामाजिक चेतना की भी बहुत बड़ी पूंजी है। धर्म और भक्ति के बहुत से तत्व और उनसे जुड़ा सुर के काव्य का बहुत सा अंश जरूर आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, किंतु उनकी कविता का मानवीय अंश जरूर युग के संदर्भों के बदल जाने पर भी कालजयी साबित हुआ है, और वही हमारी सबसे मूल्यवान विरासत भी है। हम कह चुके हैं कि भक्ति तथा आध्यात्म का सारा तामझाम हटा दीजिए तो मात्र लोक जीवन की, लोक संस्कृत की मर्मस्पर्शी छवियों के लिए, वात्सल्य और श्रृंगार की भरी पूरी संपदा के लिए, और सबसे ऊपर वर्जनाओं तथा कुंठाओं से रहित उमंग तथा उल्लास से परिपूर्ण जीवन के प्रति अपनी अप्रतिहत आस्था के लिए, नारी की अस्मिता की अपनी खरी पहचान तथा उसकी आकांक्षाओं को वाणी देने के लिए सुर हमेशा याद किए जाएंगे। कहना न होगा कि इस अंधे कवि में लोक जीवन और कविता दोनों चरितार्थ हुए हैं।